बात अच्छी है, हमारा दिन भी अच्छा है, हमारी रात अच्छी है,
आपका 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 साथ है बाबा। रचना अच्छी है, रचयिता कितना है अच्छा, सृष्टि की रचना अच्छी है, रचयिता कितना है अच्छा, जो हुआ वो भी है अच्छा, जो होगा वो भी तो अच्छा। सृष्टि की रचना अच्छी है, रचयिता कितना है अच्छा, जो हुआ वो भी है, जो होगा वो भी तो अच्छा। ऐसी सुंदर समझ की दी हमें सौगात अच्छी है, आपका 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 साथ है बाबा, तो हर एक बात अच्छी है, हमारा दिन भी अच्छा है,
ओम शांति। आपका साथ है बाबा तो सब कुछ अच्छा है। ब्राह्मण जीवन ही माना अच्छे ते अच्छा जीवन, देवताओं से भी उत्तम, इसलिए ब्राह्मणों को चोटी कहा जाता है, सर्वोत्तम, सबसे उत्तम। भगवान ने हम सब बच्चों को इस संसार में इतना उत्तम बना है, माना है, इसलिए हम सब के ऊपर बड़ी से बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी है। कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? पावन बनने बनाने की। बाबा ने कहा ना, जो तुम बच्चों का ये जन्म है, कर्तव्य है, उस कर्तव्य में लगे रहेंगे, बिजी रहेंगे, इजी रहेंगे, तो माया से मुक्त रहेंगे। और कर्तव्य कौन सा है? जो बाबा का कर्तव्य है। बाप का कर्तव्य क्या है? पतितों को पावन बनाना, यही बाप का धंधा है, सो तुम बच्चों का धंधा है। तो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी निष्ठा से, पूरे मनोयोग से, सच्चे दिल से निभाने के लिए हमें स्वयं के ऊपर उतना ही अटेंशन रखने की जरूरत है। अगर हम अटेंशन नहीं रखते हैं तो ये ज्ञान केवल ऊपर ऊपर तक ही रह जाता है, हमारे संस्कारों में नहीं समाता। ये संस्कार परिवर्तन नहीं होते हैं, थोड़े समय के लिए परिवर्तन की महसूसता होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए जो स्वयं को भी एहसास हो कि हाँ, हमारे में ये परिवर्तन हो रहा है, जो संस्कार हमारे वास्तविक में होने चाहिए, ब्राह्मणों के संस्कार, योगियों के संस्कार, वो हमारे जीवन में एक दर्पण में चलते फिरते शो केस हो, शो पीस हो। पिछले दिन संडे की मुरली में था ना, तुम बिशप के शो पीस हो। तो एक एक ब्राह्मण आत्मा से भगवान के गुण दिखाई देने चाहिए। जो बाबा की छत्रछाया में रहते हैं, भगवान की छत्रछाया में रहते हैं, जिससे जिसका कनेक्शन उससे जुड़ा रहता है, तो कुछ ना कुछ हमारे में वो दृष्टिगोचर तो होना चाहिए, वो दिखाई देना चाहिए। तो आज हम चर्चा करेंगे संस्कार परिवर्तन पर, हमारे कौन कौन से संस्कार ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि सारा खेल ही संस्कारों का ही है, स्मृति विस्मृति का युद्ध है। और उस युद्ध से अगर हमको मुक्त रहना है तो कौन सी स्थिति बनानी है, आज की मुरली में था ये लवलीन स्थिति, वेरी गुड। तो लवलीन स्थिति का अगर हमको अनुभव करना है तो स्मृति विस्मृति के युद्ध से हमको मुक्त रहना होगा, नहीं तो सारा दिन खेल हमारा स्मृति विस्मृति स्मृति विस्मृति, इसी में हमारा टाइम चला जाता है। लंबे समय से जो हमारे संकल्प हमने अपने मन बुद्धि में भर के रखे हुए हैं उनका ही चिंतन चलता रहता है, वही संकल्प हमारे संस्कार बन जाते हैं, आदत बन जाती है। अनेका अनेक जन्मों के संकल्प हमने अपने मन बुद्धि में भर के रखे हुए हैं, उनसे मुक्त होने के लिए बाबा ने जन्मते हम सबको वरदान भी दे दिया और उनसे मुक्त होने के लिए शक्ति भी दे दी, सामर्थ्य भी दे दिया, बल भी दे दिया, तरीके भी बता दिए, लेकिन उस पर कार्य तो स्वयं को करना पड़ेगा। मनुष्य दुखी जो होता है अपने संस्कारों से ही दुखी होता है, इसलिए कहा जाता है ना आत्मा अपना ही शत्रु है अपना ही मित्र है। दुख को रिकॉर्डिंग करने के संस्कारों की आदत पड़ी है, जैसे आज बाबा ने कहा तुम्हें कड़वे बोल नहीं बोलने हैं, कड़वे बोल अर्थात जो जख्मी कर दें, घायल कर दें किसको, कड़वे बोल बोलना अर्थात पापात्मा बनना, आज की मूल्य में तुम बच्चों को अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। तो एक एक संस्कार पर बाबा हमको कितना अटेंशन दिलाते हैं कि बोल हमारे कितने मीठे होने चाहिए, अगर हम सारी बाकी चीजें छोड़ दें केवल बोल के ऊपर ही फोकस कर लें तो भी हमारे परिवर्तन की गति बहुत फास्ट हो जाएगी। बाबा कहते हैं ना एक गुण पकड़ लो उस गुण के पीछे सारे आ जाएंगे, जैसे किसी परिवार का सदस्य घर से कोई गुम हो जाता है तो सारे परिवार का ध्यान कहाँ चला जाता है, जो गुम हो गया उसी पर चला जाता है। तो ऐसे अगर हम एक भी गुण अपने जीवन में आचरण में लाने की ठान लें, प्रतिज्ञा कर लें, तो स्वतः ही धीरे धीरे बाकी सर्व गुण हमारे पीछे परछाई की तरह आएंगे, भागना नहीं पड़ेगा। बाबा कहते सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकिन उसको अनुभव करने के लिए कुछ तो प्रैक्टिकल हमें अटेंशन देना पड़ेगा ना, कुछ होमवर्क तो करना पड़ेगा स्वयं के ऊपर। 24 घंटे में स्वयं के लिए हम कितना टाइम देते हैं, कितना सोच चिंतन में डूबे रहते हैं, कितना ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं, भिन्न भिन्न तरीके से अपने को परिवर्तन करने के तरीके ढूंढते हैं, ये स्वयं ही जांच करने की जरूरत है। कोई हमारे लिए दूसरा आएगा हमें परिवर्तन करने के लिए, ऐसा नहीं है, कोई आने वाला नहीं है, भगवान ने आके सब कुछ बता दिया है, कोई भी ऐसी बात नहीं छूटी जो उसने नहीं बताई है। लेकिन हम फिर भी कहीं ना कहीं अपने पुरुषार्थ को फास्ट करने के लिए कहीं ना कहीं कोई ऐसी आशा की किरण ढूंढते रहते हैं कि कहीं से कुछ क्लू मिल जाए, कुछ मिल जाए। स्वयं सागरी हमारे सामने आके समर्पित हो गया तो मनुष्य क्या कर सकता, उसमें मनुष्य क्या बता सकता है। तो सागर में हम सारा दिन कितना डूबे रहते हैं वो हमें देखना है, नहीं तो संस्कार जो है ना हमें ही दुख देते रहते हैं, धोखा देते रहते हैं, छोटे छोटे संस्कार, सूक्ष्म संस्कार। मोटे संस्कारों से तो मुक्त हो जाते हैं ब्राह्मण, लेकिन जो सूक्ष्म संस्कार जो हमने अपने अंदर में मन में पकड़ के रखे हुए हैं, फीलिंग के संस्कार, ज्यादा सोचने के संस्कार, व्यर्थ सोचने के संस्कार, किसी के ऊपर शक करने के संस्कार, कटाक्ष वाले बोल बोलने के संस्कार, रोब से बोलने के संस्कार, क्रोध से बोलने के संस्कार, ऐसे सूक्ष्म संस्कारों की इतनी लंबी श्रृंखला है, इतनी लंबी माला हम रोज पहन के रखते हैं उनको, जैसे हमारी वो अपनी प्रॉपर्टी हो गई है, उसको हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। बाबा कहते हैं छोड़े तो छूटे, लेकिन उनसे छूटेंगे कब, जब हम दूसरी चीज को पकड़ेंगे हाथ में। अगर पहले वाली पकड़ी है और दूसरी को पकड़ना चाहते हैं तो पहले वाली तो छोड़नी पड़ेगी ना, और उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही छूट जाएगी। जैसे बताया सवेरे से लेकर अगले दिन तक 24 घंटे हमारे पास होते हैं, उस 24 घंटे में हमने अपने आप को कितना देखा कि मैंने अपने स्वयं को परिवर्तन करने के लिए कितना अटेंशन दिया, भगवान के महावाक्यों को मैंने कितना अपने जीवन में लाने का प्रयास किया, 1% भी किया, 2% भी किया तो भी हो सौभाग्य। बाबा कहते हैं पूरी पूरी से तालाब भरता है, बूंद बूंद से तालाब भरता है। तो जो हमारे सूक्ष्म संस्कार हैं, जिनसे हम बार बार धोखा खाते रहते हैं, बार बार जिनसे हमको दुख मिलता है, बार बार हम हार खा जाते हैं, बार बार फेल हो जाते हैं, बार बार दुखी होते रहते हैं, बार बार रोना रोते रहते हैं, बार बार फीलिंग में आते रहते हैं, तो उन संस्कारों से स्वतः मुक्त हो जाएंगे अगर हम नए संस्कारों को निर्माण करने की आदत डालेंगे। तो अब हम देखेंगे 16 संस्कार जो हमें अपने जीवन में धारण करने हैं। वैसे तो संस्कार बहुत सारे हैं, लेकिन ये शॉर्ट में जो चिंतन किया वो हम आपस में भी चर्चा करेंगे। तो कौन कौन से ऐसे संस्कार होने चाहिए, नए संस्कार जो आत्मा में सामर्थ्य वर्धन, अंदर से आत्मा को झकझोर दें, आत्मा के अंदर से नींद उड़ जाए, आत्मा को थोड़ा करंट लग जाए, परिवर्तन करने एक दृढ़ इच्छा पैदा हो जाए अंदर में। नहीं तो ढीले ढाले बनकर चल रहे हैं, ठीक है जैसे हैं वैसे ठीक है, जैसे दूसरे चल रहे हम भी चल रहे हैं। इस ब्राह्मण जीवन में स्वयं को परिवर्तन नहीं किया तो कब करेंगे, और समय कैसे निकलता जा रहा है। ऐसा ना हो कि अंत में मार्क्स सारे नंबर समय को मिल जाएं। बाबा कहते हैं समय से जो पहले करेगा तो नंबर किसको मिलेंगे, करने वाले को मिलेंगे, अगर समय पर किया तो नंबर समय को ही मिलेंगे। इसलिए हमको स्वयं को देखना है, कौन कौन से संस्कारों को हमको ऐसी आदत डालनी है जो हमारे नेचुरल नेचर बन जाएं। तो सबसे पहले है सोमान में रहने का संस्कार। मुरली का हर महावाक्य सोमान है। बाबा कहते हैं तुम ब्लेसिंग के पात्र हो, अधिकारी आत्माएं हो, वरदानी आत्माएं हो। तो सारे दिन में हमको कितना चिंतन रहता है कि सचमुच मैं इतनी ब्राह्मण कुल की महान आत्मा हूं, ब्राह्मण चोटी हूं, स्वयं भगवान ने हमारा चयन किया हुआ है। उस सोमान में हम कितना समय स्थित रहते हैं, इसलिए वो स्मृति नहीं रहती है तो फिर युद्ध चलता रहता है, स्मृति विस्मृति का युद्ध। तो हमको मुरली से सोमान ढूंढने हैं, और नए नए सोमान, कुछ नए सोमानों में नवीनता होनी चाहिए। नहीं तो वो रटे रटाए हैं, वो रटे रटाए सोमान थोड़ा समय काम करते हैं फिर जैसे को तैसे। उन सोमानों में कुछ नवीनता लानी है। कैसे नवीनता लाएंगे, कैसे नवीनता लाएंगे सोमान में, कुछ उसमें ऐसे शब्द जोड़ देने हैं जो शब्द अंदर से खून को एकदम गर्म कर दें। कौन से शब्द जोड़ेंगे ऐसे, जैसे बाबा कहते हैं तुम मास्टर ज्ञान सूर्य हो, अब इसको नए तरीके से कैसे जोड़ेंगे, कैसे करेंगे उसको नए तरीके, चलाओ अपनी बुद्धि सभी। नहीं तो खाली हम उतना है, बस मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, बस यहां तक, बाकी आगे सोचने की जरूरत नहीं, वहीं छोड़ देते हैं। नहीं तो भगवान ने दिव्य बुद्धि किस लिए दी हुई है, अगर हम चिंतन नहीं करेंगे तो कैसे जोड़ेंगे मास्टर ज्ञान सूर्य को नए तरीके से, चलाओ चलाओ बुद्धि। जैसे वो सूर्य ऊंची स्थिति में रहता हो, मैं भी इस संसार में सबसे ऊंची से ऊंची स्थिति में रहने वाला हूं। जैसे वो तेज देता है, मैं ही इस संसार की तेजस्वी आत्मा हूं और इस संसार के सारे कीटाणुओं को भस्म करने वाला हूं, महासूर्य हूं। तो सुमान को थोड़ा चेंज करना है, नहीं तो उसी समान परमसित रहते हैं तो वह थोड़ी देर ठीक रहेगा, काम करेगा, फिर जैसे को तैसे हो जाएंगे, फिर वो रटा रटाया ज्ञान हो जाता है, फिर चिंतन चलता नहीं, बुद्धि चलती नहीं है। तो बुद्धि, बाबा कहते हैं तुमको मैंने दिव्य बुद्धि दी है, अब दिव्य बुद्धि दी है तो हमको उसको उपयोग में लाना चाहिए ना। अगर हम उसको उपयोग में नहीं लाते हैं तो जैसे हमने भगवान के दिए हुए वरदानों की भी इंसल्ट कर दी, उसको हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। उसने हमको गिफ्ट दिया है यूज़ करने के लिए और हमने गिफ्ट उसका ऐसे किनारे रख दिया, बस थोड़ा सा पकड़ा हाथ में, हाँ दिया हमको और रख दिया किनारे, तो वो भी क्या सोचेगा कि मेरे ज्ञान रत्नों की ये तो इतनी कदर ही नहीं करते हैं। तो सुमान का चिंतन करना, देखना वो तेजस्वी सूर्य हूँ और मैं मस्तक में महा तेजस्वी सूर्य चमक रहा हूँ और उस सूर्य की चमक सारे संसार में फैल रही है, संसार की सभी आत्माओं के विकारों के कीटाणुओं को भस्म कर रही है, वो सारे जर्म्स भस्म हो रहे हैं, संसार की सारी पतित आत्माओं के पतित संकल्प भस्म हो रहे हैं। उस चिंतन को विशाल करना है तो फिर हम सुमान हमारा अपना होगा, स्वाभिमान में हम स्थित हो सकेंगे। तो सुमान का चिंतन करना है, सुमान में रहने के संस्कार डालने हैं स्वयं को। सुमान की सीट में सेट रहेंगे तो सारे काम अपने आप उतरेंगे। जैसे हम सीट से उतर जाते हैं तो क्या होता है, कोई मानता नहीं है, ये हमारी कर्मेंद्रियां भी हमारी कर्मचारी हैं। अब कर्मचारी मालिक की मानी नहीं तो क्या दुखी होगा ना मालिक। तो मालिक अगर सीट पर सेट रहेगा और ऑर्डर देगा कर्मचारी इन कर्मेंद्रियों को तो वो स्वतः कंट्रोल में रहेंगी, नहीं तो आंखें धोखा देती रहेंगी, मुख से कुछ भी बोलते रहेंगे, मन से कुछ भी सोचते रहेंगे, सारे कर्मेंद्रियां अव्यवस्थित हैं। हमने खुद ही उनको ढील दे रखी है, छूट दे रखी है, इसलिए कहां भी जाती रहती हैं, आंखें जो मर्जी देखते रहे, जो मर्जी देख रहे हैं मोबाइल में, जो मर्जी सोच रहे हैं, कहां भी जा रहे हैं, कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं। तो इसको ब्राह्मण जीवन नहीं कहेंगे, ब्राह्मण जीवन अर्थात अनुशासित जीवन, व्यवस्थित जीवन, ब्राह्मण जीवन अर्थात मर्यादित जीवन, परमात्मा की श्रीमत पर चलने वाला जीवन, देवताओं से भी उत्तम जीवन। तो अंदर में थोड़ी आग लगनी चाहिए। पुराने डर्रे पर चलते रहेंगे तो कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है और ना ही हमको कोई परिवर्तन करने के लिए दूसरा आएगा, खुद को करना पड़ेगा, समय बहुत थोड़ा है, कब ये प्राण पखेड़ उड़ जाए कोई भरोसा नहीं है। बाबा कहते हैं अचानक सब कुछ होगा, बताएगा थोड़े समय, मैं अभी आ रहा हूं, बैठे बैठे अभी यहां से अभी सभी उड़ जाए तो क्या होगा। इसलिए अंतमति सुगति, पहले से हमने संस्कारों को परिवर्तन करने की अगर आदत डाली है, अच्छे अच्छे सुमान में स्थित रहने की आदत डाली है, तो वो सुमान के संस्कार स्वतः ही काम करते रहेंगे, सोचना नहीं पड़ेगा, चिंतन अपने आप चलेगा, चिंतन चलाना नहीं पड़ेगा। तो धीरे धीरे आदत डालनी है उसको, सुमान का चिंतन करने की आदत। तो पहला है सुमान में रहने के संस्कार, ये योगियों के संस्कार हैं। जो सुमान में स्थित नहीं रहते हैं वो कम योगी हैं, योगी तो हैं लेकिन खंडित योगी हैं, कभी योग लग रहा है कभी योग नहीं लग रहा है, कभी कहां बुद्धि जा रही है कभी कभी बुद्धि जा रही है, वो कहते हैं बाबा कहते हैं ना खंडित मूर्ति है। तो अखंड योगी, बाबा ने हम सब बच्चों को क्या टाइटल दिया, अखंड योगी हो तुम। तो हमेशा सुमान की सीट में रहने का हमको खुद ही तरीका ढूंढना है कि कौन कौन से सुमान में मैं स्थित रहूं, और वो सुमान सबके अलग अलग हो सकते हैं। जिस भी स्थान पर हम रहते हैं उस स्थान के अनुसार सुमान का यूज करो, अपने शब्दों में लो उसको और उन शब्दों में परमात्मा की सारी शक्ति झोंक दो, बीच में सारी शक्ति जैसे परमात्मा की उन शब्दों में भर गई है, उसकी छत्रछाया में बैठ के चिंतन करेंगे तो उस सुमान में भी ताकत आएगी, बल आएगा, उसमें शक्ति भरेगी, एनर्जी भरेगी, ऊर्जा भरेगी, और वो सारी ऊर्जा फिर हमें जागृत रखेगी, एकदम जागरूक रखेगी, पुरुषार्थ के प्रति हमारी तड़प बढ़ती जाएगी। तो पहला संस्कार कौन सा बताया, सोमान में स्थित रहने का संस्कार। दूसरा सोमान है कौन सा होगा, सबको सम्मान देने का संस्कार। आज संसार में भूखे किस चीज के हैं, सब सम्मान के ही भूखे हैं। तो सबसे पहले तो अपने आप को भी सम्मान देना है और देखना है हमको सम्मान किसने दिया है। स्वयं भगवान हमको सम्मान देता रोज आकर, कितनी बड़ी बात है कि भगवान हमको सम्मान देने के लिए आ रहा है, रोज बाबा कहते मैं बाएं पसारे बतन में खड़ा हूं, माला लेके खड़ा हूं, महसूस करना है जैसे बतन में बाप दादा माला लेकर खड़े हैं और अमृत वेले मेरा आह्वान कर रहे हैं, आओ बच्चे मैं तुम्हें ये सोमान की माला तुम्हारे गले में पहनाने के लिए खड़ा हूं। महसूस करना जैसे उसने 108 सोमान की माला मेरे गले में डाल दी कि अब इस माला को सारे दिन में फेरते रहना। तो स्वयं को भी सम्मान देना है और भगवान के महावाक्यों को भी सम्मान देना है, नहीं तो सवेरे सुन लेते हैं मुरली सारा दिन कहां पड़ी है पता नहीं चलता है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, बार बार मुरली का चिंतन करो, पढ़ो उसको, देखो। ये कोई साधारण वाक्य थोड़ा नहीं है, कोई मनुष्य के वाक्य थोड़ा नहीं है, स्वयं भगवान आके सुना रहा है। उस चार पेज की मुरली में से चार लाइन भी याद रहे तो भी यह सब आ गया। लेकिन होता क्या है, चार अक्षर भी याद नहीं रहते हैं क्योंकि हमने सम्मान ही नहीं दिया उसका। एक दुनिया भी पढ़ाई की तरह पढ़ रहे हैं जैसे, ये तो पढ़ाई हमारे 21 जन्म को प्रारब्ध के लिए, और 21 जन्मों की तो छोड़ दो, सबसे बड़े प्रारब्ध है वर्तमान इस ब्राह्मण जीवन का परिवर्तन, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति, सदा खुशी की अनुभूति, टेंशन फ्री लाइफ, समस्याओं का समाधान उसमें मिलेगा। तो भगवान के महावाक्यों का सम्मान, भगवान के महावाक्यों का सम्मान करेंगे तो भी तो हम दूसरों का सम्मान करने के लिए हमारी मानसिक स्थिति थोड़ी तैयार होगी। अगर मैंने उनके महावाक्यों का सम्मान नहीं किया तो दूसरों को कभी सम्मान नहीं देंगे हम, देंगे लेकिन वो सम्मान बाहर का दिखावा होगा, उसमें अपना स्वार्थ छिपा होगा, अपना काम निकालने के लिए हम कुछ भी योजना बनाते रहेंगे, कुछ भी षड्यंत्र रचे रहेंगे, किसी के सामने कुछ बोलेंगे, किसी के सामने कुछ बोलेंगे, और जिसके सामने उसके सामने तो खूब उसकी महिमा करेंगे और पीठ पीछे कुछ बोलेंगे। तो जब तक हमने भगवान के महावाक्यों का सम्मान करना नहीं सीखा तो हम किसी का भी सम्मान नहीं कर सकते हैं, और केवल कहने वाली बातें हैं। भले हम किसी को गुलदस्ता दे रहे हैं, फूल से माला पहना रहे हैं, किसी का हाल चाल पूछने जा रहे हैं, सब स्वार्थ समाया हुआ उसमें। सबसे बड़ा सम्मान है भगवान के महावाक्यों का सम्मान, उसको सम्मान देंगे तो हम स्वयं को भी सम्मान दे पाएंगे, नहीं तो स्वयं को भी हमने गिल्ट कॉन्शियस के भर के रखा हुआ है, अपने अंदर ही हीन भावनाओं का भंडार बुद्धि में भर के रखा हुआ है, और वही संकल्प गूंज रहे हैं बार बार, वही संकल्प अंदर में मक्खी मच्छर पैदा कर रहे हैं, उन संकल्पों से हम सारा दिन दुख के चक्र भी में फंसे हुए हैं, और उसी मेंटेलिटी से फिर दूसरों को भी हम देखते हैं, अपना दुख दूसरों को सुनाते रहेंगे। तो सम्मान देने के संस्कार, तो किस किस को सम्मान देना है उसकी भी अपनी एक लिस्ट बनानी अलग से। तीसरी बात, साइलेंस में रहने के संस्कार, क्योंकि सारे दिन में अगर हम स्वयं का विश्लेषण करें तो पाएंगे कि अधिकतर हमारे बोल ऐसे होते हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है, जिनका कोई अर्थ ही नहीं है, व्यर्थ हैं सारे वो। तो उससे अच्छा बाबा कहते मौन में रहो, चुप रहो, परसों की मुरली में था ना, चुप रहो। साइलेंस में बहुत बड़ा बल है, शक्ति है, एनर्जी हमारी बोल से कितनी चली जाती है। इसलिए बाबा ने आज क्या कहा, निंदा करने वाले को क्या समझना है, वो हमारा दुश्मन है। ऐसे होता है पुरुषार्थी भी, दो पुरुषार्थी अच्छे हैं, ज्ञान की चर्चा करते करते कहां कहां अज्ञान की गलियों में घुस जाएंगे पता नहीं चलता है, और जब पूरी तरह भटक जाएंगे तो फिर थोड़ा एहसास होता है कि हमको ये बात तो करनी नहीं चाहिए थी, करने कुछ बैठे तो हो कुछ गया, और फिर बाहर में अंदर में आत्मग्लानि का भाव पैदा होगा। उससे तो साइलेंस रह मेहनाना अच्छा है, साइलेंस में बैठ जाओ बस, साइलेंस में उससे रूरवान करते रहो, साइलेंस अर्थात अपने स्वदेश में चले जाओ, अपने घर में रेस्ट करने चले जाओ। घर कौन सा है हमारा, परमधाम, तो वहां स्थित हो जाओ शांति से। मैं आत्मा बैठी हूं परमात्मा छत्रछाया में, उसकी सारी शांति मेरे में समाती जा रही है, और मैं आत्मा जैसे प्रफुल्लित हो रही हूं, एकदम हल्की हो गई, एकदम जैसे अतीन्द्रिय सुख से भर गई हूं, भरपूर हो गई हूं, चार्ज हो गई हूं, शक्तिशाली बन गई हूं। चिंतन चलाओ, क्यों व्यर्थ में हम चले जाते हैं, उस साइलेंस के मौन के सागर में डूबे रहना है। नहीं चिंतन चलता तो ऊपर चले जाओ रेस्ट करने, मनुष्य जब थक जाता है तो कहाँ चला जाता है, पिछले संडे की मुरली में था, बाबा कहते ना घर में रेस्ट करने जाते हैं, तो यहाँ भी अगर तुम बच्चे थक जाते तो कहाँ चले जाओ, मेरे पास आ जाओ, रेस्ट करने आ जाओ, जब मर्जी आ जाओ, कोई ताला चाबी नहीं है, कहाँ वहाँ कोई रोकने वाला भी नहीं है, और वो हमारा अपना घर है, और याद भी कहाँ करना है उसको, अपने घर में याद करना है, तो उसकी प्रैक्टिस करें हम। व्यर्थ में सारी एनर्जी गंवाने की बजाय क्यों ना हम साइलेंस में अपने आप को स्थित करके उस साइलेंस के सागर के प्यार का अनुभव करें। तो साइलेंस में रहने के संस्कार डालने हैं, नहीं तो सारा दिन जांच करने के बाद पता चलता है सारी वाणी से मारी शक्तियां खत्म हो गई। इसलिए साधकों का जो संस्कार क्या होता है, मौन में रहने का संस्कार होता है, साइलेंस में रहने का संस्कार होता है। क्यों जंगलों में चले जाते थे सन्यासी, कुछ तो कारण रहे होंगे ना, एकांत में क्यों चले जाते हैं, एनर्जी है एकांत में बहुत, साइलेंस में एनर्जी है, ताकत है, शक्ति है, बहुत ऊर्जा भरी हुई है, इसलिए एकांत में चले जाते हैं। नहीं तो जितने बड़े संगठन में आते हैं, अगर हम संगठन में रहते हुए जो संगठन की मर्यादाओं हैं उनका पालन नहीं करते हैं, उन मर्यादाओं के विपरीत हम चलते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ योग भी कर रहे हैं, अगर सभी के संकल्प सकारात्मक हैं तो अच्छा अनुभव होगा, अगर संकल्प बिखरे हैं, इधर उधर चल रहे हैं, तो हमारी स्थिति ऊपर उड़ने के बजाय नीचे चली जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं योग में बैठे अगर संकल्प नेगेटिव चलाए, ये पाप का बोझ सिर पर चढ़ जाता है, फिर ये पुरुषार्थ भी हमारे लिए बोझ बन जाता है कि छोड़ो चक्कर, पुरुषार्थ विषार्थ क्या करना है, जो करने जिसको करना करते रहेंगे। पुरुषार्थ तो हमारे संस्कार हैं, पुरुषार्थ में तो बहुत सुख समाया हुआ है, लेकिन वो यथार्थ होना चाहिए, उसके लिए हमारे पास संकल्पों की संपदा चाहिए, संपत्ति चाहिए। आज बाबा ने क्या कहा, अविनाशी ज्ञान रत्न एकत्रित करो, उनका दान करो। तो तीसरा संस्कार साइलेंस में रहने का संस्कार, और चौथा संस्कार अविनाशी ज्ञान रत्नों को इकट्ठा करने का संस्कार। ये जो बुद्धि रूपी पात्र है, सारे दिन में इसमें ज्ञान रत्न छलकते रहने चाहिए, नहीं तो बाबा कहते पत्थर डालते रहते हैं, पत्थर मारेंगे दूसरों को, अंदर में डाले हुए पत्थर हैं तो दूसरों को क्या देंगे, हम पत्थर ही देंगे ना। सवेरे सवेरे भगवान रत्न भरने के लिए आया हुआ है, वो ऊपर से एक खजाना लेकर अवतारित हो रहा है, और इस बुद्धि में खजाना भर के चला गया, और बाबा कहते हैं जैसे बच्चे सुनने के बाद बाहर निकलते हैं तो बाहर जाकर पत्थर मार के दूसरों को जख्मी कर देते हैं, और जख्मी करना अर्थात पाप आत्मा बनना। क्यों मुरली भूल जाती है बाहर निकलते निकलते ही, क्योंकि मुरली, हमने मुरली सुनते समय भी हमारा ध्यान बांध नहीं था, तभी तो निकल जाता वो। तो मुरली सुनते समय भी हमारी एकाग्रता भंग नहीं होनी चाहिए। बाबा ने कहा ये फैक्ट्री कौन सी है, आज की मुरली में था, कांटों को फूल बनाने वाली, फूल बनाने वाली ये फैक्ट्री है, मनुष्यों को देवता बनाने वाली फैक्ट्री है। सोचो एक मशीन लगी है, इधर मनुष्य डाला इधर देवता निकला है, कितना अच्छा है। ऐसा पुरुषार्थ होना चाहिए, है ना, कि इस दरवाजे से आए मनुष्य बन के और इधर से निकले देवता, और बाहर देखने वाले दंग रह जाए क्या हो रहा है इधर। तो ये भी योग का प्रयोग करना है, है ना। जैसे हम कहीं भी बैठे हैं, डिपार्टमेंट में सेवा कर रहे हैं, सोचना मैं हिस्ट्री हॉल में इस दरवाजे से एंटर हुआ हूं, और इधर बाप दादा बैठे हैं, मेरे सिर पर हाथ रखा, और उधर से देवता ड्रेस में बाहर निकल रहा हूं। ये भी योग का प्रयोग है, ड्रिल है, मन बुद्धि को बिजी करने के नए नए संस्कार बनाने हैं। बाबा के कमरे में एंटर किया, किस रूप में, मनुष्य रूप में, ब्राह्मण रूप में एंटर किया, और बाबा ने हाथ रखा और मैं देवता बन के बाहर निकला। और फिर देवताई संस्कारों का चिंतन करना है, कौन कौन से देवताई संस्कार है, वो हर्षित मुख है, रोने वाले संस्कार हैं, लड़ाई झगड़ा करने वाले संस्कार हैं। तो बाबा ने जैसे हमारे सिर पर हाथ रखा और मैं देवताई संस्कार से परिपूर्ण होकर बाहर निकला, और बाहर आके रो रहा हूं तो अच्छा लगेगा, भगवान ने देवता बना के रखा है और बाहर आके दुर्गा देवी रो रही है, कैसे ले गया वो, बाहर आके हनुमान जी अपनी गदा ढूंढ रहे हैं कहां है, कैसे लेगा वो। तो भगवान हमको सवेरे सवेरे अस्त्र शस्त्र देता है मुरली के समय, तो वो देवता बनकर हम बाहर निकलते हैं, लेकिन हम साधारणता में जीते हैं, हम सोचते हैं जैसे गए थे ना उसी नाम रूप को पकड़ लेकर बाहर निकलते हैं, और बाहर आके फिर वही चेहरे आंखों के सामने घूमने शुरू हो जाते हैं जो हमने पहले से मन बुद्धि में रखे हुए हैं। तो देखना है जो भी मुरली सुनने गए हैं अभी वो पहले वाली आत्माएं नहीं है, परिवर्तन हो गए हैं। देखना है इनमें कौन कौन से गुण अभी भर गए हैं जो भगवान के महावाक्य सुनकर बाहर निकल रहे हैं। ये तो भगवान के महावाक्यों को सुनकर जैसे दिव्य गुणों से परिपूर्ण हो गए हैं, इनकी सूरतें मूरतें मुस्करा रही हैं, चेहरे पर ताज दिखाई दे रहा है, सिर पर ताज दिखाई दे रहा है, लेकिन कौन सा पवित्रता का ताज, अगर वो नहीं देखेगा तो फिर कांटों का ताज दिखाई देगा, फिर बोलेंगे ऐसा ये वैसा ये वैसी ये ऐसा है, फिर बाहर आके झरमुई जगमुई। तो ये फैक्ट्री कौन सी है, मनुष्य से देवता बनने की फैक्ट्री है। तो कौन सा संस्कार था, चौथा संस्कार अविनाशी ज्ञान रत्नों को बुद्धि में भरने के संस्कार। बैठ जाओ आंखें बंद करके, सोचो आज की मुरली में बाबा ने क्या कहा, ऊपर से लेकर अंत तक कितने शब्द मुझे याद हैं, उनमें से मैंने कौन से धारण किए हैं, कहां कहां वो मुझे भूल गए हैं और कहां कहां मैं उनको याद भी कर सकता था लेकिन उस टाइम को मैंने कहां कहां वेस्ट कर दिया। याद बुद्धि में उनको भरना है, अविनाशी ज्ञान रत्नों की चमक आनी चाहिए, ज्ञान के हीरे मोती भगवान देने आया हुआ है और उनको हमने पत्थर बन के वहीं फेंक दिया समझ के, तो क्या कहेगा भगवान। इसलिए बाबा कहते हैं अगर डैश डैश देखने तो यहीं देखो और डैश डैश देखने तो वो यहीं देखो, कौन कौन वो बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो देखना उनमें से हम कौन है, थोड़ा तो परिवर्तन होना चाहिए जीवन में, इतना ऊंचा ज्ञान मिला है। चलो बाबा नहीं याद आता छोड़ दो, ज्ञान को तो देखो कितना ऊंचा ज्ञान है ये, एक एक शब्द में परमात्म शक्ति भरी हुई है, एक एक शक्ति में परमात्म प्योरिटी भरी हुई है, एक एक शब्द में परमात्म प्यार भरा हुआ है, खुशबू भरी हुई है उसमें, लेकिन हम कम से कम उसको पकड़े तो पढ़े तो सही, नहीं तो खाली हम योग लगाने के जुगाड़ में रहते हैं, ज्ञान से थोड़ा किनारा करते जा रहे हैं। जब तक ज्ञान बुद्धि में परिपूर्ण नहीं है तो ज्ञान योग भी शक्तिशाली नहीं होगा, बिना ज्ञान के योग में बैठेंगे तो उसकी जो गहरी अनुभूति होनी चाहिए उतनी नहीं होगी। इसलिए अविनाशी ज्ञान रत्नों को एकत्रित करने के संस्कार भी हमको स्वयं में डालने, कितने संस्कार हो गए, चार। पांचवा संस्कार कौन सा होगा, सदा संतुष्ट रहने के संस्कार, क्योंकि इस लाइफ में क्या होता है कंपैरिजन करने की आदत बहुत खराब हो जाती है, दूसरों को देखने की आदत है, चाहे वो पहनावा है, चाहे किसी के पास साधन है, चाहे किसी के संबंध अच्छे हैं, कंपैरिजन नहीं करना। भगवान से जो हमको मिला उसको याद करो, भगवान ने हमको क्या क्या दे दिया, कल का स्लोगन था ना, क्या स्लोगन था कल का, कमजोरी पीछे हो जाएगी, ठीक बोला आपने, सर्व प्राप्तियों को सामने रखो तो कमजोरियां स्वतः समाप्त हो जाएंगी। तो हम सारे दिन में क्या करते हैं, सर्व कमजोरियों को सामने रखते तो प्राप्तियां समाप्त हो जाती हैं, घुमा देते हैं उसको उल्टा, करना चाहिए प्राप्तियों की याद और अपनी कमजोरियों को दुखड़े रो रहे हैं, मेरे में भी कमजोरी है, मेरा योग नहीं लगता, मुझे ज्ञान याद में नहीं रहता है, मुझे कोई सहयोग नहीं देता है, मुझे कोई पूछता नहीं है, अपनी कमजोरियों के जाल में फंसे हुए हैं, खुद को फंसाने का चक्कर भी हम खुद ही रचते रहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं सर्व प्राप्तियों को सामने रखो तो सदा संतुष्ट रहेंगे, असंतुष्टता के बीज हम खुद ही डालते रहते हैं और असंतुष्टता के बीज बोए अब उनकी पालना तो करनी पड़ेगी, बच्चे पैदा किए माँ बाप को पालना तो करनी पड़ेगी जैसे भी हो, तो हमने कौन कौन से ऐसे टेढ़े भाग के संकल्पों के बीज बो दिए अंदर में, अब उनकी पालना तो करनी पड़ेगी, एक ही संकल्प अपने में हमने बीज में डाल दिया अपनी बुद्धि में, है ना, कि मैं कमजोर हूं, बस सारा दिन कमजोरी का काम ही चलता रहेगा। इसलिए बाबा कहते हैं सवेरे उठते अपने मस्तक पर स्मृति का तिलक लगा दो, समर्थ स्मृतियों का तिलक लगा दो, समर्थ स्मृतियों की माला पहन के रखो, समर्थ स्मृतियों का ताज सिर पर कस लो, एकदम टाइट कर दो उसको। तो सदा संतुष्ट रहने के संस्कार, संतुष्ट जो मिला भगवान से हमको क्या क्या मिला वो प्राप्तियां हमारी बुद्धि में घूमती रहनी चाहिए ताकि बुद्धि अच्छी तरह से साफ सुथरी हो जाए एकदम। तो ये था पांचवा संस्कार। छठा संस्कार सदा सत्यता के संस्कार, सत्यता अर्थात देखना मैं कौन हूं, पहला पाठ, ये जो देह है ये तो असत्य है और हम सारा दिन असत्य में जीते रहते हैं, कौन सी स्मृतियां हमको रहती हैं, देह की स्मृतियां रहती हैं या देही स्मृतियां, आज की मुरली में था सारा कल्प तुमने देहधारियों को याद किया है, अब तुमको याद करना है विदेही और विचित्र बाप को याद करना है, लेकिन होता क्या है सारी स्मृतियां देह के इर्द गिर्द चक्कर लगा रही हैं, देह का यह आकर्षण बुद्धि में रिकॉर्डिंग हो रहा है,
देह की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सारा दिन वही चिंतन चल रहा है। अरे भाई, आत्मा तड़फ रही है, भूख रही, भूखी है, प्यासी है, शांति की भिखारी बन गई है। उसको किनारा करके हम दूसरी व्यवस्थाओं को पकड़ने में लगे हुए हैं। अब गाड़ी का ड्राइवर ही कमजोर है और गाड़ी को धक्का देकर चला रहे हैं हम। तो सत्य स्वरूप में स्थित रहने की का प्रयास करना है, पुरुषार्थ करना है, स्मृति में रहना है, वो संस्कार डालने हैं कि हुआ माई सत्यम शिवम सुंदरम की संतान है। आत्मिक स्थिति में स्थित रहने के संस्कार डालने। नेक्स्ट है सहनशीलता के संस्कार, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में आए माना सिर ओखली में दिया, मूसल तो पड़ेंगे पड़ेंगे। अगर मूसल नहीं पड़ते माना ब्राह्मण जीवन नहीं है, वो मूसल पड़ने ही चाहिए किसी ना किसी तरीके से, तो कोई तो कुछ बोलता ही रहेगा, क्योंकि हमारे अपने ही बीज बोए हुए हैं, पूर्व जन्म हुए हैं, अभी ब्राह्मण जन्म है ना, तो इसलिए मूसल तो पड़ेंगे। अब सिर ओखली में जाए तो मूसल से क्या डरना, खाओ प्यार से उनको, आहा कितना मजा आ रहा है, सामने वाला को गाली दे रहा है, क्या समझना उसको। बाबा ने कहा अगर कोई गाली देता है तो फूल बरस रहे हैं, वाह क्या बात है, एक फूल नहीं फूलों की बरसात हो रही है, लेकिन कब होगा, वो हमारा टीचर है। और अगर हम स्मृति में नहीं रहते तो हम उस समय फटीचर हो जाते हैं, इसलिए स्मृति में रखना है ना। भगवान को कितनी गालियां दी, लेकिन बाबा फिर भी आकर हमको कितना प्यार से बाबा पालना दे रहे हैं, कितने ऊंचे ऊंचे सुमान में स्थित कर देते हैं, लेकिन बाबा भी अपनी तो कसर निकाल ही लेते हैं धीरे 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 धीरे। अच्छे अच्छे सुमान कहने के बाद क्या कहते हैं, तुम भी बद्दर बुद्धि थे पहले, लेकिन बाबा के शब्दों में कितना प्यार भरा हुआ है, कितना उसमें रस भरा हुआ है। तो सदा सहनशीलता के संस्कार ने, ठीक है, क्योंकि सब आत्मा का अपना अपना पार्ट है, और सहनशीलता तब आएगी जब हम अपने आप को ज्ञान से भरपूर रखेंगे तो, क्योंकि समय आने पर उस समस्या का समाधान करने के लिए वो बात याद आनी चाहिए, इसी को बाबा कहते तीव्र पुरुषार्थी। और वो लंबे समय के संस्कार होंगे ज्ञान को सिमरन में करने के, तो समय पर वो स्वतः काम आएगा, क्योंकि सबके पार्ट अपना अपना है, सबकी बुद्धि अपनी अपनी है, समझ अपनी अपनी है, सोच अपनी अपनी है, तो सहनशीलता है। और दूसरी बात, बाबा ने कहा सहनशीलता के लिए आज्ञा किसकी है, भगवान की आज्ञा है, बाप की आज्ञा है, तो हम उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं तो वो जो दुआएं मिलेंगी वो दुआएं हमारे जीवन को निर्विघ्न बना देंगी। तो सहनशीलता के संस्कार। नेक्स्ट है स्वच्छता के संस्कार। हमारे जीवन में स्थूल और सूक्ष्म दोनों स्वच्छता जरूरी है। हमारे जो घर का वातावरण है, ऑफिस का वातावरण है, कहीं का भी वातावरण है, स्वच्छता अनिवार्य है, क्योंकि हमारे आसपास की चीजों में एनर्जी हमारी अपने आप बहुत सारी एनर्जी खत्म हो जाती है जितनी, इसलिए मंदिरों में कितनी स्वच्छता होती है, क्यों वहां के वाइब्रेशन इतने अच्छे होते हैं, क्योंकि क्यों वहां गुड फीलिंग आती है, क्योंकि स्वच्छता है। तो हमारे विचारों को भी स्वच्छता चाहिए, ऐसे नहीं कोई भी देखा किसी की कमजोरी देखी बुद्धि में भर ली, कुछ भी देखा बुद्धि में भर लिया, किसी ने कुछ बोला बुद्धि में भर लिया, ये कुमार कचरे का पात्र थोड़ा नहीं है। तो स्वच्छता रखनी अपने आप को, शुद्ध विचारों से स्वयं को परिपूर्ण करना है, स्थूल और सूक्ष्म दोनों स्वच्छता के संस्कार। नेक्स्ट है संग दोष से मुक्त रहने के संस्कार। आज की मूल्य में था, क्या था, बाबा ने कहा स्वयं को संग दोष से मुक्त रखना है, संग तारे कुसंग बोरे, क्योंकि संग में अगर हम एक बार पड़ जाते हैं तो धीरे धीरे वो आदत पक्की हो जाती है, उससे छूटना फिर मुश्किल हो जाता है। इसलिए स्वयं को देखना है मेरे पांव किस तरफ जा रहे हैं, भगवान के हाथ को पकड़ के रखा हुआ है या देदारियों के हाथ को पकड़ के रखा हुआ है, बुद्धि की बात है सारी, कौन मेरी बुद्धि में बार बार घूम रहे हैं, बाप का साथ है या पाप का साथ है, बुद्धि में देखना है किसकी बातें घूम रही हैं, देदारियों की बातें घूम रही हैं या भगवान ने जो सुनाई है वो बातें बुद्धि में घूम रही हैं। तो संग दोष से स्वयं को मुक्त रखने के संस्कारों संस्कार डालने हैं। नेक्स्ट है आज का स्लोगन, क्या स्लोगन था, स्मृति और विस्मृति के युद्ध से स्वयं को मुक्त रखने के संस्कार। जैसे हम विस्मृति में होते हैं तो निकालो पॉइंट, याद करो, फिर से स्मृति लाओ, लवलीन अवस्था, अगर उसमें स्थित रहना है तो स्मृति और विस्मृति के युद्ध को समाप्त करो। उस युद्ध में खुद ही कूद पड़ते हैं जाके। ज्ञानियों का टाइम है, एकांत में रहने का टाइम है, स्वयं का चिंतन करने का टाइम है, सुदर्शन चक्र फिराने का टाइम है। अगर हमको थोड़ा भी कोई मिलता है चलो घूमने, बस गए उसी में चले गए, भगवान का हाथ छोड़ के दूसरी तरफ चलो खेलने चलो, कोई जीवन का सिर पैर ही नहीं है, अनुशासन ही नहीं है स्वयं पर, ब्राह्मण जीवन की मर्यादाओं का ख्याल ही नहीं है। फिर हम आक्षेप दूसरे पर लगाते हैं, आरोप दूसरे पर लगाते हैं कि वो मुझे साथ में ले गया, अरे गए तो हम खुद ही है ना। बाबा ने कहा तुम्हारे संघ का प्रभाव दूसरों पर पड़ना चाहिए, ना कि दूसरों के संघ का प्रभाव तुम्हारे पर पड़ना चाहिए। लेकिन कभी कभी उल्टा हो जाता है, संघ में बह जाते हैं हम। तो संघ दोष से स्वयं को मुक्त रखने के संस्कारों की विधि ढूंढनी है कि कैसे हम दूसरों को भी अपने संघ का रंग लगाएं। जो संघ हमको मिला है, भगवान का इतना ऊंचा संघ मिला है, जो बाबा कहते तुमको मैं पत्थर बुद्धि से पार्स बुद्धि बना देता हूं, तो क्या वो पार्सनाथ के लक्षण हमारे में आ रहे हैं? अगर वो लक्षण स्वयं में नहीं है तो हम फिर दूसरों, क्योंकि दूसरे हमारे में वो लक्षण देखते नहीं है इसलिए हमको साथ में ले जाते हैं। अगर वो लक्षण हमारे में दिखाई देंगे तो दूसरा ले जा ही नहीं सकता वो। तो देखना संघ दोष से मुक्त रहने के संस्कार या स्मृति विस्मृति के युद्ध से मुक्त रहने के संस्कार हैं। नेक्स्ट है साधना के संस्कार। साधना के संस्कार छोटे छोटे, सारे दिन में ऐसे गोल रखने हैं, 5 मिनट के, 2 मिनट के, 10 मिनट का, उसमें मन की एकाग्रता को बढ़ाने का अभ्यास करना है, जो बाबा अलग अलग तरीके से ड्रिल बताते हैं। नई ड्रिल तैयार करनी है, जैसे बताया ना अभी एक ड्रिल, कि यहां से घुसे ब्राह्मण रूप में और देवता रूप में निकले, फिर शांति स्तंभ में देवता रूप में एंटर किया और फरिश्ता रूप में बाहर निकले, फिर वहां फरिश्ता रूप में बाबा कमरे में एंटर किया और सीधा वहां से शांति धाम, और शांति धाम से फिर बाबा नहीं, वहां से बाबा ने उतरने नहीं दिया सोचना बाबा ने वहां पकड़ के रख लिया थोड़ा टाइम, फिर वहां से उतरे, फिर सीधा थप करके कहां गिरे, सूक्ष्म बदन में, बाबा बाहें पसारे खड़ा है, ऊपर से जैसे आसमान से उतर रहा हूं और वहां मैं फरिश्ता बनकर बाबा की गोद में बैठा हूं। नई ड्रिल जो बाबा ने बताए वो तो बताए, वो तो एक मेथड बताया, लेकिन उसके नए तरीके हमको करने हैं। जैसे मैथमेटिक्स में क्या होता है, 12 क्वेश्चन होते हैं किसी भी लेसन में, तो 12 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक उसका एग्जाम्पल देते हैं। 12 एग्जाम्पल थोड़ा नहीं देते, एग्जाम्पल तो एक ही देते हैं ना, लेकिन उसको सॉल्व तो हमको अपने तरीके से करना पड़ता है ना। तो बाबा एक एग्जाम्पल बताते हैं, तुम बच्चे ऐसे ड्रिल करो और उसको नए तरीके से तैयार करो। जैसे बताया फैक्ट्री है, तो सोच लो फैक्ट्री है, गेट में एंटर हुए, जैसे मैं फैक्ट्री में घुस रहा हूं अभी, कौन सी फैक्ट्री में, मनुष्य से देवता बनने की फैक्ट्री में घुस रहा हूं, और फिर बाहर जाके देखना है जब वापस लौटेंगे बाहर कि देवता की ड्रेस है कि नहीं है, ठीक है। तो नए नए ड्रिल की प्रैक्टिस करनी है, कुछ भी कर सकते हैं, किसी ना किसी तरीके से हमारा बुद्धि योग बाबा से जुड़ा रहना चाहिए, ठीक है। तो कौन से संस्कार बताए थे, साधना के संस्कार। तो साधना के तरीके हमको नए नए तरीके ढूंढने हैं, कैसे हमारी साधना दिन प्रतिदिन शक्तिशाली हो जाए, प्रखर हो जाए, एकदम उसमें नवीनता आ जाए, रोचक वो साधना हो, साधना की खींच हो। ऐसा नहीं कि योग का टाइम है और भारी हो गए, कब 1.5 घंटा निकलेगा अभी, नहीं, वो तो हमारा 1.5 घंटा एकदम डूब रहने का है। जैसे योग का टाइम तो मुख में लार टपकनी चाहिए, जैसे मिठाई का नाम आता है तो कैसे लार टपकती है, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, जलेबी, कैसे कैसे लग रहा है, इमली मुख में कैसे आ जाता है। तो योग भी ऐसे ही करना अपने को, हाँ, योग के रसगुल्ले खाने हैं। तो साधना के नए संस्कारों का निर्माण करना है। कितने संस्कार हो गए, 8.5 हो गए, 9 संस्कार 9:30 तक टाइम हो रहा है। तो हाँ, तो साधना के संस्कार। नेक्स्ट है सेवा के संस्कार। सेवाएं था हैं, स्थूल सेवाएं तो हैं, लेकिन सूक्ष्म सेवा के संस्कार। बाबा कहते हैं सबसे बड़ी सेवा कौन सी है, मनसा सेवा, क्योंकि स्थूल सेवा करना सहज है फिर भी, क्योंकि वो दिखाई दे रही है, लेकिन सूक्ष्म सेवा, मन से सेवा करना तो मनसा में जैसे आत्मा को इमर्ज करना है, फील करना है, जैसे ये हिस्ट्री हॉल है तो सारे संसार की आत्माएं इस हिस्ट्री हॉल में प्रवेश कर चुकी हैं और मैं आत्मा सामने बैठी हूं, जैसे आधार मूर्त उद्धार मूर्त हूं। और स्वयं ज्ञान सूर्य परमात्मा शिव बाबा ऊपर से आया और मेरे सिर पर छत्रछाया बनकर बैठा और मुझ आत्मा से उन सर्व आत्माओं को सर्व शक्तियों की साकाश जा रही है, जैसे संकल्प चल रहे हैं 2 मिनट 5 मिनट, यह सूक्ष्म सेवा के संस्कार डालने, योगयुक्त सेवा के संस्कार डालने। तो सेवा के संस्कार कितने हो गए? 12 संस्कार हो गए ना, कितने हो गए? 12 हो गए। नेक्स्ट, स्नेह देने के संस्कार। स्नेह कौन सा देंगे? रूहानी स्नेह, आत्मिक स्नेह, जिस स्नेह में थोड़ा मीठे बोल दो, स्नेह के बोल ही बोल दो किसी को। हम देखते हैं कोई को ज्ञान सुनने आते तो ज्ञान नहीं सुनते, वो खाली देखते हैं हमको फोटो खींचनी है, तो कुछ जो उनको फोटो खींचने के लिए मना करते हैं ना तो उनका मुंह चेंज ही हो जाता है। नहीं, उनको फोटो खींचने दो, उनको स्नेह से उनका खुद ही फोटो खींच दो, क्योंकि उनको स्नेह की भूख है और हम उनको ज्ञान सुना रहे हैं। कौन सुनेगा ज्ञान? जिसको जिसकी जरूरत है वो बीज थोड़ा बो दो तो आने वाले टाइम में वो ज्ञान अपने आप सुनेगा। कुछ दिन पहले की बात है, दोपहर के टाइम में एक युगल आया था, बाहर ही था, तो बोला हमको यहाँ भोजन करना है। अब भोजन की तो ऐसे है नहीं परंपरा, कोई टूरिस्ट आए तो बोला भाई ऐसे तो होता नहीं, जिनका प्रोग्राम होता उन्हीं को भोजन कराया जाता है इधर, तो चले गए बेचारे ऊपर ओम शांति वन देखने। तो हम वहाँ मिले उनको, तो बोला हमको ना दवाइयाँ खानी और ये भोजन भी करना है। तो हमने बोला पहले आप ये ओम शांति वन देख लो, तो हम उनके चेहरे को भी देख रहे थे तो बड़े भारी मन से चल रहे साथ में, क्योंकि सोचा भाई इतने पवित्र स्थान पर आए हैं, अगर मना कर दिया पता नहीं इनके मन से कैसी बातें निकलेगी जो हमको गड़बड़ कर देंगी, तो हमारे साथ चल दिए वो देखने के लिए। तो हमने बिठाया, फिर 2-4 बातें सुनाई, तो देखा चेहरे के हावा उनके सुन तो रहे लेकिन उनको अंदर में जैसे बीमारी की तकलीफ हो रही है। तो हमने बोला आप ऐसे करो, आप चलो पहले भोजन कर लेते हैं। तो बेचारों ने भोजन किया आके फिर दवाइयाँ खाई। हमने देखा वो कोई डायबिटीज़ का पेशेंट था, कोई बीपी का ही पेशेंट था, 2 लोग थे, मियाँ बीबी, साइंटिस्ट था वो। तो भोजन करने के बाद वो तृप्त हो गया एकदम। तो भोजन कराते कराते मैंने उनको ज्ञान भी सुना दिया, तो काम उसमें भी हो गया दोनों ही। तो अभी वो जाना भी चालू कर दिया उधर कहाँ जहाँ से भी आया था। तो ऐसा नहीं हमको तरीका ढूंढना है कि ऐसा नहीं डायरेक्ट किसी को ज्ञान ही सुनाते रहो, उसकी नब्ज को पकड़ना है बाबा कहते हैं। इसलिए स्नेह देने के संस्कार, हम इस पूरी सृष्टि की माँ हैं, पूरी सृष्टि की पालना करने वाले हैं, तो स्नेह देने से संस्कार चाहिए। नेक्स्ट है सहयोग देने के संस्कार, समय पर किसी को सहयोग देना, यह भी बहुत बड़ा पुण्य है। हम किसी को सहयोग देने में समर्थ्य रखते हैं तो जरूर सहयोग देना चाहिए, वो अलग बात है। अगर हम वो नहीं दे पाते हैं तो रास्ता तो बता सकते हैं ना उसको, तो सहयोग देने के संस्कार है। नेक्स्ट है सम दृष्टिकोण के संस्कार, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई किसी धर्म का हो, कोई गरीब हो, अमीर हो, गोरा हो, काला हो, कोई भी सम दृष्टिकोण होना चाहिए, चाहे कोई आगे बड़ा पुरुषार्थी है, छोटा पुरुषार्थी है, नहीं, सब बाबा के बच्चे हैं। नहीं तो अधिकतर ऐसा भी होता है कि हम अच्छे पुरुषार्थी हैं, ये तो ऐसा ही है, हीन भावना, दूसरों के प्रति हीन भावना रखना माना भगवान के ज्ञान पर उंगली उठाना। अरे उसने भगवान ने उसको आके चुना हुआ है, उसने पता नहीं भगवान ने कितनी विशेषताएं उसमें देखी होंगी, उतनी हमारे में भी नहीं होंगी जितनी उसमें है। और समय आने पर वो आत्मा देखेंगे भगवान के आगे खड़ी होगी और हम सबसे पीछे होंगे। तो सबके प्रति सम दृष्टिकोण रखना है। और लास्ट के संस्कार हैं साक्षी दृष्ट रहने के संस्कार भी डालने हैं, क्योंकि इस ब्राह्मण जीवन में बड़े उतार चढ़ाव आएंगे, कई प्रकार की परिस्थितियां आएंगी, कई प्रकार की सीन सिंदरी आएंगी, सब में साक्षी रहने के संस्कार। अगर हमने स्वयं को साक्षी रहने की आदत नहीं डाली तो स्वयं हम धोखा खा सकते हैं। तो ये 16 संस्कार थे, योगियों के 16 संस्कार। कौन कौन से संस्कार थे? सबसे पहला संस्कार सोमान में रहने का संस्कार, कभी भी सोमान की सीट को छोड़ना नहीं है। हमारी कुर्सी हमारे से छीन के क्यों ले जाए, अपनी कुर्सी पर बैठे रहना हमेशा। दूसरा सम्मान देने के संस्कार, तीसरा साइलेंस में रहने के संस्कार, चौथा अविनाशी ज्ञान रत्नों को एकत्रित करने के संस्कार, ज्ञान की संपत्ति अर्जित करने के संस्कार, पांचवा संतुष्ट रहने के संस्कार, छठा सहनशीलता के संस्कार, सातवां सत्यता के संस्कार, आठवां नहीं स्नेह बाद में, उससे पहले कुछ और है, स्वच्छता के संस्कार, नेक्स्ट संग दोष से मुक्त रहने के संस्कार, नेक्स्ट अगला क्या बताया, स्मृति और विस्मृति के युद्ध से मुक्त रहने के संस्कार, ये सारे मुरली से पॉइंट ही है, कुछ भी बना सकते हो उसमें, नेक्स्ट साधना के संस्कार, नेक्स्ट सेवा के संस्कार, कितने होंगे 12, नेक्स्ट स्नेह देने के संस्कार, नेक्स्ट सहयोग देने के संस्कार, नेक्स्ट 15वां नहीं दूसरा था कुछ, अभी अभी तो बताया है, सीट तो पहले सेट हो चुके हुए हैं, अभी थोड़ा सीट से उतर के देखो, सम दृष्टिकोण के संस्कार, और लास्ट वाला साक्षी दृष्टा में रहने के संस्कार। तो ऐसे तो बहुत सारे संस्कारों की लिस्ट बना सकते हैं, अपने आप को ज्ञान योग में उलझा के रखना है तो उसमें हमारे जीवन का कल्याण होगा, नहीं तो हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। ओम शांति।
सोचा था हमने तो होगी मरुथल में हरियाली, कभी न सोचा था हमने तो होगी मरुथल में हरियाली, हमारे मन की बगिया में होगी चहुं और खुशहाली, कभी न सोचा था हमने तो होगी मरुथल में हरियाली, हमारे मन की बगिया में होगी चाहूं और खुशहाली, आपके प्यार की दिल पर, आपके प्यार की दिल पर हुई बरसात अच्छी है, आपका 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 साथ है बाबा तो हर एक बात अच्छी है, हमारा दिन भी अच्छा है, हमारी रात अच्छी है, आपका साथ है बाबा।